الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. عربی زبان میں ہماری زبان کے بارے میں ایک بہت پرانی کہاوت ہے، کہتے ہیں زبان کے لیے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، ایک جیم کے زیر کے ساتھ جرمہ اور دوسرا جیم کے ضمے اور پیش کے ساتھ جرم. اس کا میننگ یہ ہے کہ یہ زبان کی سائز بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے کرائمز اور اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں. یہ بہت پرانے زمانے سے زبان کے لیے کہی جانے والی بات ہے. آج کے زمانے کے اندر اگر یہ کہاوت کسی چیز پر صحیح معنی میں فٹ آتی ہو تو وہ ہیں ہمارے موبائل اور سیلولر فون، کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ سائز بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے کرائمز اور گناہ بہت بڑے بڑے ہیں. قرآن میں شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، شراب کے حرام ہونے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا. شراب کے لیے ایک لفظ آیا ام الخبائث، یعنی بہت سارے گناہ اور برائیوں کی جڑ. اگر اس زمانے کے اندر بہت سارے گناہوں کی جڑ، برائیوں کی جڑ اگر ہم کسی چیز کو کہہ سکے تو یہ ہیں موبائل، انٹرنیٹ والے کنیکشن والے فون. ہمارے تصوف کے جو سلسلے ہیں اس میں ایک سلسلہ ہے نقشبندیہ سلسلہ، جیسے چشتیہ ایک سلسلہ ہے، سہروردیہ ایک سلسلہ ہے، قادریہ ایک سلسلہ ہے، رفاعیہ ایک سلسلہ ہے، شاذلیہ ایک سلسلہ ہے، تو ایک نقشبندیہ سلسلہ بھی ہے اور اسی کی ایک برانچ ہے مجددیہ سلسلہ. تو نقش بندی سلسلے کے کچھ اصول ہیں عمل کے. اس میں ایک اصول ہے خلوت در انجمن، یعنی پبلک کے بیچ کے اندر بھی آدمی بیٹھا ہو تو بھی دھیان اس کا اللہ کی طرف لگا ہوا رہے. کہ پبلک ہے، مجمع ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل میں، دماغ میں، اپنی سوچ میں اکیلا ہے اور اللہ کی طرف اس کا دھیان ہے. اب اس زمانے کے اندر موبائل کی دنیا بھی ایسی ہے، خلوت در انجمن، سب کے بیچ میں بیٹھے ہوں گے، پبلک کے بیچ میں ہوں گے، لیکن وہ چیٹ کی دنیا میں ایسے مست ہوں گے کہ وہ ہیں اور سامنے جس سے چیٹنگ ہو رہا ہے وہ ہے، باقی آجو باجو کون ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کچھ اس کو پتا نہیں، بس وہ اپنی چیٹ کی دنیا میں مست ہوتا ہے. بلکہ اپنے یہاں انڈیا میں تو ایسے واقعات ہوئے کہ موبائل میں ایسے مست ہوئے کہ ٹرین آئی پتا بھی نہیں اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا. ایسے بھی قصے ہوئے کہ ریلوے ٹریک کارس کراس کر رہے ہیں اور وہ اپنی مستی میں مست ہے، ٹرین کا ڈرائیور ہارن مار رہا ہے پھر بھی اس کو کچھ سمجھ نہیں، اور وہ اپنی مستی میں اتنا مست ہے کہ ٹرین نے اس کو ٹکر ماری. نیوز پیپر میں ایسے قصے آتے رہتے ہیں. تو یہ ہیں اس زمانے کے اندر موبائل کا حال. ابھی موبائل کے متعلق میں چند باتیں بتلاتا ہوں جائے تجزیے کی، آپ لوگ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں کچھ چیزیں اس میں بڑھانے کے لیے. نمبر ایک، بہت سارے لوگ فون اچھے اچھے جو رکھتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو دکھلاوا کرنا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو میں اتنا شاندار موبائل استعمال کروں اور لوگوں کو اپنا منی پاور دکھلاؤں. جس کو قرآن کے اندر کہا یوراؤن الناس الذین ہم یوراؤن، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کام کرتے ہیں. اور قرآن میں قارون کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا، اس میں بھی آیت بیان فرمائی فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی قوم کے سامنے نکلا قارون شو کرتے ہوئے، دکھلاوا کرتے ہوئے. تو یہ دکھلاوا کرنا، شو کرنا، منی پاور کو لوگوں کے سامنے دکھلانا، یہ بڑی بری اور خطرناک چیز ہے. نمبر دو، بہت سے لوگ موبائل رکھتے ہیں کھیل کود کے واسطے کہ بھائی کوئی میچ ہو رہی ہے یا موبائل میں گیمز ہے، کھیل ہے، اس کے لیے بہت سارے لوگ یہ موبائل رکھتے ہیں. اس کے لیے ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ جو لوگ پیسے خرچ کر کے باقاعدہ ایسی بیکار چیزیں کھیل تماشے کی خرید کر کے لاتے ہیں وہ انسان اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہے، وہ برے انسان ہے. ایک تیسرا مقصد ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا گانا اور میوزک، کہ موبائل رکھتے ہیں میوزک کے لیے، سانگس کے لیے، گانے بجانے کے لیے. اب وہ ایئر فون لگا کر کے گانے میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ باہر کی دنیا سے ان کو کچھ خبر ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. اور ایسے لوگوں کے بھی بڑے بڑے ایکسیڈنٹ کے قصے میڈیا کے اندر آتے رہتے ہیں کہ کان میں ایئر فون ہے हेडफोन है, म्यूजिक चल रहा है और वो उसमें ऐसे गफलत में पड़े हुए हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए, फिर भी उनको पता और खबर नहीं है। और हदीस में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाने और म्यूजिक की वजह से दिल के अंदर निफाक उगता है, जैसे कि बारिश की वजह से हरी हरी घास उगती है। बारिश का पानी गिरता है तो ग्रीन लॉन उग निकलती है, बिल्कुल इसी तरीके से म्यूजिक सुनने की वजह से इंसान के दिल दिमाग के अंदर निफाक उग करके निकलता है। नंबर चार, बहुत से लोग सीरियल देखने के लिए मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल में एक से एक फिल्म की सीरियल और दूसरी सीरियलें उसको देखने के अंदर लगे रहते हैं, जिसमें पराई औरतें, एक्ट्रेस, मॉडल्स वगैरह को देखेंगे और बदनजरी और नापाक नजर के गुनाह के अंदर मुब्तला होते हैं। शरीयत के अंदर पराई औरत को गंदी और शहवत की नजर से देखना ये हराम है, बहुत बड़ा गुनाह का काम है। तो लोग सीरियलों के जरिए, फिल्मों के जरिए से पराई औरतों को, मॉडल्स को, एक्ट्रेस को देखने में लगे रहते हैं, ये भी अपनी जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत सारे लोग शादी कर ली, मोबाइल है तो बीवी बिचारी इंतजार में है, लेकिन ये अपने मोबाइल ही में लगे हुए हैं। ऐसे भी दीवाने होते हैं कि शादी के बाद भी मोबाइल को तलाक देने की तौफीक नहीं होती, बल्कि वो बीवी से कम बात करेंगे और मोबाइल के ऊपर ज्यादा लगे रहेंगे। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। वहां इंग्लैंड में एक फैमिली का प्रॉब्लम सामने आया था, वो कुछ ताल्लुक वालों में थे, तो मैंने हस्बैंड वाइफ को दोनों को समझाने के लिए बिठाया, तो दोनों ने अजीब कारगुजारी दोनों की आई। दोनों रात को ईशा के बाद बेडरूम में जब जाते हैं तो एक बेडरूम है, एक बेड है, पलंग है, शोहर अपने मोबाइल में, चैटिंग में, जिसके साथ भी हो लग जाता है, और बीवी उसी पलंग के ऊपर वो भी मोबाइल में चैटिंग में लग जाती है। उन्होंने बतलाया कि कम से कम 1.5 साल ऐसा गुजरा है कि हम दोनों ने बेडरूम में जाकर एक दूसरे से बात भी नहीं की, दोनों अपनी मोबाइल की दुनिया में, और जिसको जब नींद आती है तो सो जाते हैं। बिल आखिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो होना चाहिए, तलाक हो गई दोनों के बीच में। तो इस तरह भी बाद लोग मोबाइल के ऊपर इतने पागल और दीवाने बनते हैं। बहुत से लोग कार्टूनों की वजह से मोबाइल रखते हैं, पता नहीं कार्टूनों के अंदर उनको क्या मजा आता है, उसमें कौन सी टेस्ट और लुत्फ की चीज है कि जब भी देखो तो ये कार्टून, वो कार्टून, ऐसा कार्टून, वैसा कार्टून। हालांकि आपको मालूम है कि इन कार्टूनिस्टों ने हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की कैसी तौहीन और कैसी तजलील की। तो एक ये भी एक गलत मशगला है, फालतू का, फजूल का एक काम है। बहुत से लोग कॉपी पेस्ट, पोस्ट, सेल्फी, वीडियो वगैरह के लिए जो है मोबाइल अपने पास रखते हैं। अपने यहां एक दीव सी साइड है और बहुत अच्छा दरिया किनारा है दीव, वहां पर कुछ दोस्त लोग दरिया में गए, फ्रेंड सर्कल, और पानी के उछलते हुए मोजों के अंदर वो सेल्फी के चक्कर में पड़े। और ऐसे सेल्फी के चक्कर के अंदर पड़े कि वो सब के सब पानी के अंदर बह के मर गए। और कितने दिनों के बाद दीव के सामने सूरत के बाजू में जहां एयरपोर्ट है दुमस के दरिया में उनकी लाश मिली। ये अंदाजा लगाओ कि ये सेल्फी का चक्कर कितना खतरनाक है कि इंसान की जान निकल जाती है, जान इंसान की बर्बाद हो जाती है। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुल्कु बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपने आप को हलाकत में मौत में मत डालो। आज रील बनाने के लिए सेल्फी बनाने के लिए लोग जान को खतरे में डालते हैं और बहुत से तो उसमें हकीकत में मर भी जाते हैं, लेकिन एक पागलपना है, जुनून है उनको इस तरह के काम करने का, ये भी गलत। और बहुत से लोग कमेंट करने के चक्कर में रात दिन लगे रहते हैं। वो क्या करेंगे, किसी ने कोई आर्टिकल लिखा, किसी ने कोई मजमून लिखा, किसी ने कोई बात शेयर की, अब बैठे बैठे उसके ऊपर कमेंट करनी है, कमेंट पे कमेंट करनी है, तबसेरे पे तबसेरे करने हैं। हालांकि हमारे जिम्मे दीन के बहुत से काम हैं, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तिलावत करो, बीवी बच्चों को टाइम दो, अब्बा अम्मा को टाइम दो, हलाल रोजी कमाओ, इल्म हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, मेहनत करके आगे बढ़ो। इतने सारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ करके बस कमेंट में और उसके पीछे चक्करों में लगे रहते हैं। ये भी एक अपने वक्त की बर्बादी है और उसका कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है, ये भी एक तरह का गलत काम है। और बहुत से लोगों की जिंदगी ऐसी बन गई है कि अब तो बेचारों को खाने पीने के वक्त पर भी मोबाइल ही के अंदर दिल लगा रहता है। एक आध पिज्जा हाथ में लिया, बर्गर हाथ में लिया, एक बुक खाया और फिर वही धंधा। अब वो चबाते चबाते भी वही काम, पीते पीते भी वही काम। हालांकि एक्सपर्ट डॉक्टर लोगों ने इस पर बड़े बड़े आर्टिकल लिखे कि जब आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, इस वक्त पर फोन को बिल्कुल इस्तेमाल मत करो, इसलिए कि उसके अंदर जो वेव्स आते हैं, उसके अंदर जो बारीक बारीक तरंग आती है, वो अगर खाने पीने के साथ पेट के अंदर गई, हमारे सांस के साथ अंदर गई, तो उससे हमारी हेल्थ को, तबीयत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे सब खतरात उसके अंदर मौजूद है। बहुत से लोग डाउनलोड करने के चक्करों के अंदर, ये डाउनलोड वो डाउनलोड, काम की चीज, बेकार चीज, हर एक उस, बहुत से लोग ऐसे चक्करों में लगे रहते हैं। बहरहाल इस तरह के बहुत से मकासिद के लिए लोग मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। यहां ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि जरूरत की चीज जरूरत के वक्त पर जितनी जरूरत हो इतना इस्तेमाल करना सीखो। जैसे कि टॉयलेट हमारी जरूरत की जगह है। अब इस्तिंजे से फारिग होने के बाद कौन अकलमंद ऐसा है कि वहां बैठ कर के वे जरा खुशबू लो या बैठ कर के, वो तो जल्दी जल्दी बाहर निकलेंगे, जरूरत पूरी हो गई फौरन बाहर निकल जाएंगे। तो इसको एक जरूरत की चीज समझो कि जितनी हमारी जरूरत कम से कम मिनिमम टाइम के अंदर पूरी हो जाए इतनी देर के लिए उसको इस्तेमाल करो। और आज बहुत सी जगहों के ऊपर ये हुआ कि माँ बाप अपने बच्चों को खुद मोबाइल खरीद के देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे इसके चक्करों में इतने पड़ते हैं, तालीम में कमजोर, मदरसे में कमजोर, स्कूल का रिजल्ट कमजोर, कारोबार में हलाल रोजी कमाने में कमजोर, सब चीज के अंदर वो पीछे रह जाते हैं और हर वक्त उसके अंदर लगे रहते हैं। मैंने अभी अभी एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल काट करके रखा हुआ है मेरे पास, उसमें ये है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को कोई बड़ी एग्जाम दिलवाना चाहते थे, तो उन्होंने तकरीबन 2.5-3 साल तक अपने बच्चे को मोबाइल हाथ में पकड़ने भी नहीं दिया। तकरीबन 3 साल कंटिन्यू उसका नतीजा और रिजल्ट ये हुआ कि वो लड़का उस एग्जाम में 100% मार्क से पास हुआ और एक बहुत अच्छा नाम उसका जो है यूनिवर्सिटी के अंदर बना। तो आज दुनियावी एतबार से भी जो लोग इसको समझते हैं वो उसके अंदर ज्यादा अपना टाइम लगाना, ज्यादा उसके अंदर रहने को बहुत खतरनाक समझ रहे हैं। ऐसी ये बुराई की चीज हो गई है और आजकल उसके ऊपर ऐसी ऐसी क्लिप्स, ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी ऐसी वेबसाइट और ऐसी ऐसी गंदी चीजें आती है कि इंसान के अखलाक बर्बाद होते हैं, पाक दामनी बर्बाद होती है, बल्कि अब तो ऐसी चीज आने लगी कि इंसान का ईमान नऊज़ु बिल्ला बर्बाद हो जावे, इंसान ईमान से महरूम हो जावे। इस तरह की चीजें बहुत सी जगहों पर ऐसे किस्से आए कि नौजवान लड़की है लेकिन वो मोबाइल के जरिए से कुंवारी लड़की किसी 4 बच्चे के बाप के अफेयर के अंदर पड़ गई। उसको मालूम ही नहीं कि वो सामने कौन है और उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। अब ये जवान लड़की 4 बच्चों के बाप के साथ लफड़े के अंदर पड़े। फिर बाद में जब उसको पता चला तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बाहर निकलने का। जब उनको अफसोस होता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया, गलत कॉन्टेक्ट किया, तो आखिर में बहुत सी ऐसी लड़कियां नऊज़ु बिल्ला सुसाइड कर डालती है और सुसाइड करके मर जाती है। और बहुत सी मुसलमान नॉन मुस्लिम के साथ पड़ जाती, उसको पहले पता नहीं होता है कि सामने नॉन मुस्लिम है और उसके अफेयर में इतनी आगे बढ़ेगी कि निकाह, मैरिज और फिर नंबर आता है कि नऊज़ु बिल्ला ईमान बर्बाद हो जाता है। इतनी खतरनाक ये लत है, इसलिए हमें इसको जरूरत की चीज बनाना कि जितनी जरूरत, जितनी देर जरूरत, इतनी देर इसको इस्तेमाल करो और उसके अंदर एक काम हो सके तो करो कि रोजाना कुछ टाइम ऐसा रखो कि मोबाइल के बगैर हमें जीना है, कि इतने बजे से इतने बजे का टाइम का मोबाइल हाथ में भी नहीं लेंगे, मोबाइल को अपने पास भी नहीं रखेंगे। ऐसा भी कोई टाइम रोजाना अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर तय करो ताकि इसकी लत और उसकी बुरी आदत धीमे धीमे छूटे। एग्जाम्पल, मैं फजर के बाद जब क्लास में जाता हूं तो फोन घर होता है, डायरेक्ट 11:30 बजे मदरसे की छुट्टी होती है, वहां तक मदरसे के टाइम में बिल्कुल फोन नहीं। दोपहर में सबक का टाइम होता है, बिल्कुल फोन करीब में भी नहीं। और रात को ईशा के बाद मुताला करके जब सोने का वक्त होता है तो डॉक्टरों का मशवरा है कि बेडरूम में भी मोबाइल मत ले जाओ, बेडरूम से उसको बाहर रखो। इसलिए कब ऐसी ऐसी इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अपने बेडरूम में क्या कर रहे हो, आपका कैमरा एक्टिव करके कोई भी आदमी सब कुछ देख सकता है और उसकी गंदी गंदी वेव्स वो आपके दिमाग और आपके माइंड के ऊपर असर कर सकती है। एक आदमी की 2 बीवी है तो दूसरी बीवी से कुछ उसको शक रहता था, तो उसने बाकायदा उसके लिए कोई ऐसी चीज खरीद करके फोन में डाली और फोन में डाल करके उसने खुद मुझे आकर के बताया कि देखो ये मेरी बीवी घर में है, अभी वो किसी से बात नहीं कर रही है, फोन बंद है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसी सिस्टम उसने दाखिल करवाई कि बीवी घर में क्या काम कर रही है, क्या बोल रही है, किससे बात कर रही है, वो सब चीजें अपने फोन पर सुन सकता है। और मुझे आके उसने सुनाया बाकायदा, चूंकि वो प्रॉब्लम का मसला था इस वजह से, तो ऐसी ऐसी इसके अंदर चीजें इस वक्त आ चुकी है कि हमारा ये फोन है, हम बात नहीं कर रहे, लेकिन 30 मीटर के एरिए के अंदर कैमरा भी एक्टिवेट ऑटोमेटिक होता है और आप जो बात कर रहे हैं वो कोई दूसरा सुन भी सकता है, चाहे फोन चालू हो के न हो गए। ऐसी ऐसी सिस्टम उसके अंदर आ चुकी है। तो ये तो एक बहुत बड़ा जासूस हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। इतनी ज्यादा इसके अंदर बुराइयां आगे बढ़ चुकी है। एक साहब आए एक मर्तबा इंग्लैंड से कि मैं ट्रीटमेंट कराने आया। मैंने कहा काय की ट्रीटमेंट? तो कहिया स्क्रीन के ऊपर मेरा इतना टाइम लगता था, इतना टाइम लगता था कि मेरे दिमाग की तमाम रगे सूख गई, खुश्क हो गई मेरी रगे, और अब मुझे सही नींद भी नहीं आती है, तबीयत बेचैन रहती है। तो डॉक्टरों ने कहा कि उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। तो आए तो अच्छे आदमी थे, एक फार्म हाउस में रहे, फोन वन छोड़ दिया, अड़ी तीन महीने तक अच्छे अच्छे दिमाग के डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराई, तब जाकर के उनका दिमाग कुछ ठीक हुआ। ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें इसके अंदर आ रही है, इसीलिए इसको जरूरत के वक्त पर जितनी जरूरत हो इतना ही इस्तेमाल करो और रोजाना कुछ टाइम फोन से दूर रहने की प्रैक्टिस करो। रात को बेडरूम से भी दूर रखो, खाते पीते वक्त तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, चाहे कितना भी बड़े आदमी का फोन हो। ऐसी कुछ चीजें बनाओ और अपनी औलाद के बारे में भी सोचो कि उनको हम जितना हो सके कम से कम उसको फोन देना चाहिए। मैंने एक साहब को नज़म पढ़ते सुना, बहुत अच्छी नज़म उन्होंने पढ़ी मोबाइल के बारे में। अभी यहाँ के सफर से पहले बॉम्बे में एक जलसे में था तो एक मौलाना साहब ने नज़म पढ़ी थी। मैंने उनको कहा कि लिख कर के दो, बहुत अच्छी नज़म है तुम्हारी। मोबाइल के फितने में सब मुबतला है, जो पहले नहीं थे वो अब मुबतला है। मुबल्लिग मुदर्रिस मुजाहिद मुकर्रिर, अजब शै की लत में अजब मुबतला है। मुसव्विर मुसन्निफ जमींदार मीरासी व आली नसब मुबतला है। किताबों के शौकीन भी जद में आए, जो समझाओ कहते हैं कि हम कब मुबतला है। कई बीबियां हम सफर ढूंढती है, कई बीबियां बेसबब मुबतला है। मैसेंजर से निकले तो व्हाट्सएप में डूबे, यही खामखा रोज और शब में मुबतला है। गंवारों पे तनकीद करते हो हुदहुद, के अफसोस अहले अदब मुबतला है। तो ये अजीब फितने की इस जमाने की चीज हो गई है, इसलिए कुछ तो सोचना होगा इसके बारे में कि हम इसके अंदर कितने उसकी लत के अंदर आगे बढ़ चुके हैं। अल्लाह सुबहानहु व ताला इसके फितने से हम सबकी, हमारी औलाद और नस्लों की हिफाजत फरमावे। और जो है इसको जैसा मैंने आपको कहा, जरूरत के वक्त पर जितनी जरूरत हो जायज कामों में, दीनी कामों में, मबाह कामों के अंदर उसको इस्तेमाल करने का मिजाज और आदत बनाओ, और जो है उससे अपने आप को जितना बचा सको उसमें अपना फायदा है। अल्लाह सुबहानहु व ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत साल पहले हम स्पेन गए थे, मैंने कारगुजारी लिखी भी है उसकी। तो स्पेन की एक मस्जिद के अंदर गए तो दरवाजे के ऊपर अरबी में बहुत अच्छा लिखा हुआ था, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी थी मोबाइल के बारे में कि वक्ताइल इत्तिसालात वत्तसिल खालिकिल इत्तिसालात, कि ये मोबाइल के जरिए जितने कॉन्टेक्ट है मस्जिद में आते ही बंद करके सारे कॉन्टेक्ट खत्म कर दो, और ये सारे कॉन्टेक्ट को पैदा करने वाले अल्लाह के साथ मस्जिद में कॉन्टेक्ट जोड़ो। अब अगर ये कैफियत हमारी हो गई तो इंशाल्लाह हम बहुत कामयाब हैं। अब तो हाल ये है कि तरावी के अंदर भी बहुत सी जगहों पर सुना देखा कि इधर तरावी हो रही है, लोग पीछे मोबाइल में लगे हुए हैं, क्या पढ़ा जा रहा है इनको कुछ परवाह भी नहीं है, न सुनते हैं, पीछे मस्ती में मस्त लगे हुए रहते फोन के ऊपर। ये तो कुरान मजीद की भी बहुत बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी है। अल्लाह ताला हमें ऐसी बेअदबी से बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।